राम यह प्रवचन परम श्रेय स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10/12/93 रात 8 बजे कलकत्ता में हुआ।
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशी विभूषित करवीर दावात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
मनुष्य शरीर की विशेषता महान महाराज ने बताई। मुदमाप देव भगवान बड़े खुश हुए। मनुष्य शरीर बढ़ाने से ब्रह्मा जी पर खुश है कि बड़ा अच्छा किया। तो मनुष्य में क्या विलक्षण का है? मैंने पहले वेद में कहा था कि मनुष्य शरीर को अधम बताया है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच ऋतिया अधम शरीरा, उसको अधम बताया है। और जहां कागभूषण ने पूछा है, गौड़ जी ने पूछा है, कागभूषण जी ने बताया है, सबसे उत्तम मानुष देही। सबसे शरीर बढ़िया कौन सा है? तो सबसे उत्तम मनुष्य शरीर है। जिस शरीर को जीव चरा चत जात चर असर सावर जंगम सब जीव इसको चाहते हैं। देवता भी चाहते हैं कि हमारे को भारतवर्ष में जन्म मिले। तो मनुष्य में क्या विशेषता है? तो इसमें एक विवेक की विशेषता है। विवेक ज्ञान है, ये भगवान ने स्वतः दिया है, उसकी विशेषता है। तो उसकी विशेषता में भी मैंने ये बात बताई थी कि विवेक का सदुपयोग बढ़िया है, दुरुपयोग इसका महान पतन करने वाला है। विवेक शक्ति क्या कि सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इन दोनों को ठीक पहचानने का नाम विवेक है। विचित्र प्रतु भाव से बनता है विवेक, अलग अलग जानना, अलग अलग जान करके और असत का त्याग करे, सत को ग्रहण करे। अब इसमें एक बात बताता हूं, आप ध्यान देकर के सुने। अपने को त्याग क्या करना है? अपने जाने हुए असत का त्याग करना है। अपने जाने हुए आप शास्त्रों को पढ़े न पढ़े, संतों का संग मिले न मिले, ऐसा विचार आप करें न करें, परंतु ये स्वतः आपको ज्ञान है कि ये नाश होने वाले हैं, ये मरने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, इनका वियोग होने वाला है। ऐसी बात स्वतः जानते हैं। ये पशु पक्षी नहीं जानते। गाय बड़ी पवित्र होती है, जिसका गोबर और गोमूत्र भी पवित्र होता है, वो इस बात को नहीं जानती, अविनाशी नाशी सत असत को। तो हम जानते हैं असत और उसका त्याग नहीं करते, ये बड़ा भारी अपराध है, ये बड़ी गलती होती है। जाने हुए असत का त्याग करना कितनी विशेष विलक्षण बात है। हमें तो भाई ये जब बात मिली, जब इनको मैं पढ़ा और मिली तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी सार बात मिल गई है। पढ़ाई में कर ली थी, पढ़ाई भी कर ली, सब झेल लिया, परंतु ये जब बात मिली तो एक भीतर में प्रकाश हुआ कि कैसी बढ़िया बात है। अपने जाने हुए असत का त्याग, वो त्याग भी क्या, उनके विश्वास का त्याग, उनके भरोसा का त्याग, उनके आश्रय का त्याग। जानी हुई अब असत को छोड़ देना, इतनी बात नहीं, वो भी छोड़ देना भी एक अवस्था होती है, परंतु जाने असत, जाने हुए असत का विश्वास नहीं करना, जाने हुए असत का भरोसा नहीं करना, जाने हुए असत के आश्रित नहीं रहना, उसको आधार नहीं बनाना, उसको अपना लक्ष्य नहीं बनाना, उस पर अपने हैं अपनी स्थिति उन पर नहीं बनाना। ये सावधान मात्र मनुष्य को रहना चाहिए और इस सावधानी से तत्व ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा की भक्ति हो जाएगी, योग की सिद्धि हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, जो कुछ आप थे वो सब कुछ हो जाएगा। इस एक बात से विधि सीधी सरल बात है, जैसे शरीर है इतने ही, ये अब जानते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है वो मरने वाला है, वो नष्ट होने वाला है, तो ये असत है। तो असत का त्याग क्या करना, कि इसके भरोसे नहीं रहना, इसका विश्वास नहीं करना, इसको आश्रय नहीं देना है, इसको महत्व नहीं देना है, उपयोग करना है, उपयोग सदुपयोग करना है, नाशवान चीजें उनका सदुपयोग करना है। जैसे अपने घर में लगी हुई पानी की कल है, कई जगह ऐसा होता है इतने बजे तक जल आएगा, तो उतने बजे तक जल ले लेना चाहिए, क्योंकि इतने समय के बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये सावधानी रखते हैं कि भाई इसमें जब तक जल आता है तब तक जल भर लो अपना। इसी तरह से ये जब तक रहे असत तब तक इससे काम लेना वो ले लो, धन कमाओ न्यायुक्त, क्यों न्याय और अन्याय इन दोनों को हम जानते हैं, अन्याय असत है, अन्याय सत है, धर्म सत है, अधर्म असत है। तो असत का आश्रय ना लें, असत को स्वीकार ना करें, न्यायपूर्वक धन कमावें और यथोचित धन को लगावें। धन के उपयोग की बात हम लोग सोचें, जो धन हमारे और दूसरों के काम आ जाए वो धन धन है, और केवल पड़ा रहे वो धन धन नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो आवे जो ही उड़ा देना चाहिए, पास में नहीं रखना, ये नहीं कहता। ये तीन आश्रमों के लिए तो बताया है, जैसे वानप्रस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, इसके लिए तो संग्रह का निषेध किया है, पर गृहस्थों के लिए न्याय धन आ जाए तो उसका संग्रह रखना निषेध नहीं है, तो छोड़ देना फेंक देना ऐसा नहीं हो, उसको रखो। पर रखो किस लिए, अपना निर्वाह हो, ऐसे औरों का भी निर्वाह हो। हम जैसे अन्न जल वस्त्र काम में लेते हैं, जिससे हम जीते रहे, जी करके अपना उपयोग काम करें, लोगों की सेवा करें, घर का धंधा करें, इसलिए जीते रहे, निर्वाह के लिए है, स्वाद सुख ही नहीं, निरर्थक खर्चा नहीं। जिनके बिना काम ठीक चलता है वो खर्चा नहीं, ऐसे चतुराई के साथ इसको काम में ले। तो ये अच्छी तरह से काम में लेना ये सत है, उसको बर्बाद करना ये असत है, नष्ट करना, जुआ खेलना, हॉकी क्रिकेट खेलना, ये खेल तमाशा में शरीर का, इस संसार का और अपनी आयु का, जिसका मैंने पहले वर्णन किया है, हमारे पास पूंजी बताई है मैंने, मनुष्य की शरीर की उम्र की एक पूंजी है, उस पूंजी का अपव्यय नहीं करना है। धन की अपेक्षा भी ऊंचा धन है, ये मैंने पहले कहा है और फिर कहता हूं, हमारे पास बहुत बढ़िया पूंजी हमारी उम्र है, जीने का समय है, ये सबसे प्यारा है, सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, जीना चाहते, तो जीवन है ये सबको प्यारा है। और इस उम्र में हम चाहे सो काम कर सकते हैं, सांसारिक उन्नति कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और भगवान भी आदर करे, भगत मेरे मुकुटमणि ऐसे हम बन सकते हैं। तो समय का सदुपयोग करना है, ये समय रूपी हमारे पास धन है। वो ये जो अभी मैं कह रहा था धन, इसकी अपेक्षा बहुत ऊंचा है, क्योंकि समय देकर हम रुपया कमा सकते हैं, पर रुपया दे करके उम्र नहीं दे सकते। जीने का समय अगर रुपयों से मिलता तो धनी आदमी नहीं मरते। 10,000 की और उम्र दिया होगी, 50,000 के लिए और तुम कुछ जिएंगे तो धनी नहीं मरते। पर लखपति, करोड़पति, अरबपति को भी मरना पड़ता है, पैसे के बल से जी नहीं सकते। और जीवन जब तक है तब तक श्वास हमारे लेना है, तब तक मर नहीं सकते। बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी आदमी बच जाता है। कई कैसे एक्सीडेंट हुए हैं, उनमें मनुष्य बच गए हैं। तो उम्र होने से हम बच जाते हैं, बड़ी आफत में भी जहां मरने की संभावना हुआ भी हम जी सकते हैं हमारी उम्र रहने से। तो हमारी उम्र का जो समय है ये बड़ा कीमती है। ऐसे ही धन आदि है, तो ये क्या है, ये संसार है, जीव असत मान नाशमान चीजें है। तो शरीर भी जाने वाला है, ये उम्र भी रहने वाली नहीं है, तो इसका सदुपयोग करना है। हमारे और औरों के अभी और परिणाम में हित की बात सोचना है। ध्यान देना, चार बात बताई मैंने, अभी भी दुनिया का हमारा हित हो, उसका परिणाम में भी हमारा और दुनिया का हित हो। तो हमारा भी हित, दुनिया का भी हित, अभी हित और परिणाम में भी हित, चार बात है। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित की बात सोचना ये श्रेष्ठता है। किसी का भी अहित सोचना, किसी का भी नाश हो जाए सोचना, अनिष्ट सोचना है। वो दीनता तो अभी अनिष्ट दूसरों का करते हैं, परंतु वो अपना ही अनिष्ट करते हैं। इसका परिणाम आगाड़ी चल करके अपना अनिष्ट होने वाला है। इस वास्ते किसी का अनिष्ट नहीं सोचना है, सबका इष्ट सोचना है। तो सबके फायदा हो ऐसा करना है। तो अभी भी फायदा हो और परिणाम में भी, अभी पाप कर रहे हैं, अन्याय करते हैं, मदिरा मांस मछली अंडा आदि भक्षण करते हैं, तो जीवों का त्याग नाश करते हैं और उसका नतीजा भी हमारा नाश होता होगा। मांस होता, मांस है ना, मांस का अर्थ करके मांस, मैं जो नाश करता हूँ वो मेरा नाश करते हैं। स माम नष्ट नाश कहते, तो वो नष्ट करने वाला, अगर ये पतन करने वाला है। जीवों के नाश करने से मांस पैदा होता है। मांस कोई ऐसा नहीं है कि जो पत्थर आदि चीज पड़े जीव मिल जाए, प्राणी जो जीते हुए उनको मारने से वो मिलता है। तो ये अहित बात है, ये असत है, जाना हुआ असत है, जानते हैं कि ये नुकसान की बात है। ऐसे चोरी है, व्यभिचार है, हत्या है, दुर्गुण दुराचार है, ये हमारे को पतन करने वाले हैं। संसार में भी हमारी फजीती करने वाले हैं, झूठ बोलना, कपट करना, चोरी करना, डाका डालना, दूसरे का नाश करना, हिंसा करना, हत्या करना, ये अपने लिए और दूसरों के लिए बढ़िया बात नहीं है। दीर्घता तो ऐसा है कि हमने धन चुरा लिया, डाका डाल दिया, किसी से ठगाई कर ली, तो हमने लाभ ले लिया, ये लाभ से हानि बहुत ज्यादा होगी। जिसकी ठगाई की है उसका, जिसकी हानि की है, डाका डाला, उसका उतना अहित नहीं हुआ है जितना हमारा अहित होगा। ये थोड़ी सी ध्यान देकर बात सोचने की है। चोरी करता है, डाका डालता है, ठगाई करता है, दिखता है कि धन ले लिया हमने, परंतु जिसकी ठगाई की है, जिसका डाका डाला है, जिसकी चोरी की है, उसका हमने अहित किया है, वो अहित थोड़ा है, उसके तो वस्तु का नाश हुआ है और हमारे स्वभाव का नाश हुआ है। हमारी भीतर की आदत है, धारणा है, उस धारणा की हत्या की है। क्यों? चोर बने बिना चोरी कर नहीं सकता, हत्यारा बने बिना हत्या कर नहीं सकता, हिंसक बने बिना हिंसा कर नहीं सकता, डाकू बने बिना डाका डाल नहीं सकता, ठग बिना ठगाई कर नहीं सकता। तो हम भीतर से ठग बन जाते हैं, चोरी बन जाते, चोर बन जाते हैं, हत्यारे बन जाते हैं, व्यभिचारी बन जाते हैं। तो हम भीतर से अपना नाश करते, पतन करते हैं। इतना दूसरों के धन का नाश, उनका नाश नहीं होता है। एक बात और मार्मिक है, चोरी में, डाके में, ठगाई में जो धन जाता है, वो धन हमारा नहीं जाता है, वो जाने वाला ही जाता है, उसका तो वो फल भोग होगा। तो उसके तो पुराने कर्मों का फल भोग हुआ है, जिससे वो शुद्ध हुआ है, और हमने अपने आप को अशुद्ध कर लिया और अशुद्ध वस्तु ले ली, पतन हमारा अपने कर लिया। तो ये असत है, ये ठीक नहीं है। इस बैठी का त्याग करना मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य ये जानता है कि असत है, क्योंकि आपको कोई ठगता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? आप अगर डाका डाले तो आपको अच्छा लगता है? आप चोरी करे तो अच्छा लगता है क्या? तो आपको अच्छा नहीं लगता है। वो करने वाले को अभी अच्छा दिखता है, मूर्खता के कारण उसके फल बहुत नतीजा बहुत खराब होगा। तो हमारा तो धन जाता है, वो जाने वाला ही जाता है, नहीं जाने वाला नहीं जाता। मैंने कई ऐसी घटनाएं सुनी है, नाम बता कर क्या करे। एक जगह की बात है, सच्चे आदमी थे, तो उन घर में चोर आए और चोरी करने लगे। तो पुराने जमाने की बात है, ये बहनों माताएं अपना गहना रखती थी, एक कठोर दान होता उसमें, डबिया की तरह कठोर दान होता है, उसमें रखती थी। तो चोर आए, चोरों ने वो कठोर दान लिया और उसमें धन निकाले। तो उनके बेटे की बहू को आवाज आई, जगतू तेरे घर में चोरी हो रही है। वो जगर गई तो कुछ नहीं ले गए, कुछ भाग गए, चोर ले गए कुछ नहीं। इन्होंने भी एक दो गणा तो उठा ले, दौड़ते भागते हुए भी भाग गए, नहीं ले जा सके। तो नहीं जाने वाला धन नहीं जाता, जाने वाला ही धन जाता है। तो हमारे पास रहने वाला नहीं है, वो ही रहेगा। यदस्मदीयम नहीं तत्परवेशम, सिद्धांत है। प्राप्तव्य अर्थम लभते मनुष्यो देवो वृतम लंग यो तुम न सकता तस्मा न सोचा न विस्मयो में यदस्म देयम नहीं तपरेशम, जो हमारी बुद्धि से की हो नहीं सकती, तो हमारे सुन जा नहीं सकता। हमारे को आने वाला बुखार क्या आपको आ जाएगा? जब दुख भी हमारा आपको नहीं आ सकता, तो धन भी हमारा आपको कैसे चला जाएगा? हमारे जाने वाला ही जाता है, पर लेने वाला चोरी नहीं करता है, उसके ऐसा नहीं आने वाला आता है। आने वाला तब आता है जब न्याय पर है, अन्याय से लेता है, वो आने वाला धन नहीं है, और वो काम आवेगा नहीं। आपके काम थोड़ा आवेगा और निर्थ हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा वो। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम दश वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति। अन्याय से लिया हुआ धन 10 वर्ष रहेगा, ऐसा शास्त्र में नियम है। प्राप्ते त्वेकादशे, एकादश वर्ष में वो नहीं, उनके साथ घर वाला धन भी जाएगा, उतना ही नहीं जाएगा, और ज्यादा चला जाएगा। तो पहले जमाने में हम सुनते हैं, वर्षों तक तो राज्य रहता था, दस पंद्रह बीस पचास पीढ़ी तक राजा रहते थे, धनी आदमी रहते थे, बीस पचास वर्ष तक सौ वर्ष तक धनी धनी चले आ रहे हैं। आजकल के धनी ज्यादा दिन धन नहीं रख सकते, आजकल के राजा ज्यादा राजा नहीं रह सकते। कारण क्या है कि अन्योपार्जित है, वो न्याय से आया हुआ नहीं है, अन्यायोपार्जित धन रहता नहीं सकते। हमारे वो दस वर्षों तो शास्त्र लिखा है, आज तो पंचवर्षीय योजना है, पांच वर्ष के बाद जयराम जी उसे भी आदि है, शास्त्र में दस वर्ष तो लिखा है, तो दस वर्ष भी रहेगा नहीं, क्योंकि अन्याय उपार्जित है, वो न्याय से नहीं है, अपने परिश्रम से नहीं है, खड़े परिश्रम से अपना न्याय से लिया जाए वो चीज नहीं है, तो वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी, तो रहेगी थोड़े वर्ष रहेगी। दस वर्ष एक संकेत बताया है, कोई नियम नहीं है ये, कोई दस वर्ष तो रहेगा ही, ये नियम नहीं है। जो अन्याय से लिया हुआ धन अपना रहेगा नहीं, जाएगा तो समूल नष्ट होता है। जैसे तालाब होता है, उस तालाब में जल भरता है तो उसे एक निष्ठा लगाया जाता है, ज्यादा हो तो निकलने के लिए जगह रख लेती है, वो रखने से तालाब उसमें उतना ही रहता है, ऊंचा नहीं भरता। अगर वो बंद कर दिया जाए और ऊपर तक भर दिया जाए तो भरता तो ऊपर तक है, परंतु फिर तोड़ कर निकलेगा तो सब निकल जाएगा, बहुत कम रहेगा, वो टूट जाएगा जाके। इस तरह से दान पुण्य शुभ काम में खर्च करना है, ये धन की रक्षा है। लोग समझे खर्च हो रहा है, खर्च नहीं है, रहने वाले धन की रक्षा। वो निष्ठा लगाने से धन वो पानी रहता है, ऐसे शुभ काम में खर्च करने से धन रहता है। और आप अन्याय करोगे और वो धन शुभ काम में नहीं खर्च करोगे तो कदरिया का दृष्टांत भागवत के एकादश स्कंध में है, स्कंद में एकादश में है, कदरिया ब्राह्मण की कथा आती है एकादश में, तो वो ना खर्च करता नहीं तो सब धन नष्ट हो गया, भाई बंधु कुपित हो गए, घर वाले कुपित हो गए, तो उस पर क्या दशा हुई उसकी। ये काम कर लोभ कर क्रोध का वहां दृष्टांत दिया है, पुरुर्वा का दिया, काम का दिया है, ये धन का लोभ का दिया है, तो इन लोभ में फंसने से आदमी के अहित होता है, बहुत नुकसान होता है, तो सब कुछ चला जाता है, फिर रोता रहता है। इस वास्ते असत का त्याग, जाने हुए असत का त्याग क्या है, उनको आश्रय न बनावे, उसके लिए अन्याय, असत के लिए असत करना पड़ता है, असत को स्वीकार करने पर कई असत करना पड़ता है। जैसे झूठ आप बोलो तो कई जगह आपको निगाह रखनी पड़ती है, निगाह रखते रहे कहीं न कहीं सांस निकल जाती है, आप पकड़े जाते हो। या सच बोले बिल्कुल निर्भय निशंक, कोई पूछो कभी पूछो कहीं पूछो ठीक बोलते हैं, उसमें कोई पकड़े नहीं जाएंगे, भय भी नहीं होगा। अरे एक असत के लिए कितना असत बोलना पड़ेगा फिर भी कहीं न कहीं पकड़े जाओगे तो सत निकल जाएगा। सत है वो नित्य है, सत है, असत असत ही है, ये अनित्य है, नाशवान है। तो आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, जीव मात्र को बताया है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल और सहज सुख राशि है। सहज सुख राशि दुख क्यों पाता है, दुख पाता है अन्याय के कारण से, अपने जाने हुए असत का आश्रय लेने से, अपने जाने हुए असत का महत्व लेने से। जीवन और संपत्ति हमारी रहने वाली नहीं है, ये कौन नहीं जानता है बताओ। कोई भाई बहन आ हो वो ऐसा जानता हो कि हमारे को पता नहीं है कि मरना पड़ेगा, ये पता नहीं है, और ये अवस्था जो हमारी स्थिति है ये रहने वाली नहीं है, ये नहीं जानते वाला कौन है। सब जानते हैं कि जो वर्तमान अवस्था ये रहेगी नहीं, चाहे उन्नति हो जाए चाहे अवनति हो जाए चाहे अभाव हो जाए, ये रहने वाली नहीं है। तो ये रहने वाली नहीं है तो असत हुई ना, तो असत का आश्रय मत रखो, वस्तुओं को उपार्जित करो, सदुपयोग करो, दूसरों के हित में लगाओ, अपने भी निर्वाह में लगाओ, इसमें अच्छे तरह करो। केवल संग्रह करना है ये चीज असत है, ये चीज ना आपके काम आएगी ना दूसरे काम आएगी, किसी काम नहीं आएगी। जैसे लोग इकट्ठा करते हैं नोट, एक बक्सा भरा नोट से, हम रद्दी अखबारों से वो बक्सा भर लें, क्या फर्क है उसमें, आप नोट भर दिया हमने रद्दी कागजों में, नोट भर दिया तो बक्सा भर लिया, खर्च करोगे तो फर्क पड़ेगा, खर्च नहीं करे ना अपने लेने दूसरे खर्च नहीं करे तो फर्क क्या है बताओ। सोना चांदी हमने भर लिया, एक हमने पत्थर भर लिया, बाहर बोझा तो वैसे ही है। खर्च करो तब ना सोना चांदी कीमती है, नहीं तो पत्थर की समानी और क्या फर्क है बताओ। अपने उम्र में आपने भी खर्च नहीं किया तो आपके भी काम नहीं आया और आपके कुटुंब में भी काम नहीं आया, मरने पर दूसरों के काम नहीं आया तो क्या फायदा हुआ। तो धन काम आता है खर्च से, लोग खर्च तो करते हैं तंगी से और कमाते हैं। अरे कमाने की महिमा नहीं है, धन के खर्च की महिमा है। कमाओ धन बिना खर्च किए आपका काम आवेगा? आपका धन खर्च किए बिना दूसरे काम आवेगा? किसी के आ ही नहीं सकता। तो खर्च नहीं करना चाहते, कमाना चाहते हैं और वह है उसके अनुसार खर्च करो। खर्च उतना ही है जो ठीक किया जाए। एक बारी बादशाह की बात याद आ गई, वीर फिल्म विरोध में हमने पढ़ी थी बालकपन में। बादशाह ने एक सौड़ बनवाई रात्रि को ओढ़ने के लिए, रजाई सीरक वो बनाई तो वो अपने से छोटी बना दी। तो लोगों का ओढ़ाओ हमारे को ओढ़ाओ तो सिर पर ओढ़ाओ तो पैर उघड़ रह जाए, पैरों की तरफ से सिर उघड़ा रह जाए। क्या उठाओ ठीक तरह से? कहना था नहीं उठा सकते। तो कहते वीर बल होता तो उठा देता। तो बोला अरे वीर बल को लंबी कर देता इसको कैसे उठा देता? कि तुम नहीं उठा सकते, वीर बल उठा सकता था। जैसे वीर बल को बुलाओ तू नाराज हो गए थे वीर बल से, तो बुलाया बुलाया तुझे क्या बात है? कई बादशाह कहते हैं छोड़ उड़ाओ तुम उठा नहीं सकते। वीर बल ने उठाई, उड़ा करके पैर लंबे थे पैदों को पकड़ करके नीचा कर दिया कि तेते पाव पसार के गए थी लंबी छोड़ देखो उठा देना। तो इस तरह से आप खर्च करो तो तेते पाव पसार के गए थी लंबी छोड़। जैसे आप सुगमता से खर्च कर सकते तो इतना खर्च करना, ज्यादा खर्च करना नहीं है। तेते पाव लेकिन लंबी छोड़ नहीं है तो कैसे पाव पसार हो गए? तो चट उठा दिया। तो अपनी शक्ति से अनुसार इस वास्ते कहा है सत सारो दत्त पाटी है नापो कहत नरा निपट ना करो न दीजिए उन तो देख घरा। सत सारो दत्त पाटी है आपको लगाना हो शक्ति के अनुसार। मारवाड़ी काल में महाराज फूल सारी पांखड़ी है, अब फूल सारी पांखड़ी है तो उसी अनुसार खर्च करो जितनी शक्ति सुगमता से कर सको। साधन में यही बात है, जितनी आप सुगमता से कर सको, नहीं कर सको आप पर जिम्मेवारी है ही नहीं। कहता ज्ञान हमारे को नहीं होता, ऐसी समझ हमारी नहीं होती। अरे भाई आप जितनी समझ है, जितना आपको ज्ञान है, जितना आपके बल है, जितनी आपकी बुद्धि है, उतना ठीक से काम करो। उतना ही करना है, उससे अधिक करना है ही नहीं, जिम्मेवारी नहीं। आप एक 10 वर्ष के बच्चे से 2.5 मण का पोड़ा उठाकर ले आवे ये आप आशा नहीं रखते तो क्या आपसे भगवान मूर्ख है? जो आप न कर सको आपसे आशा रखे? आपसे आशा उतनी रखते हैं जितना आप कर सकते हो। तो जितना बल है, जितनी बुद्धि है, जितना धन है, योग्यता है, उतना ही आप काम कर सकते हो। उतने में आप गड़बड़ी मत करो, असत का आश्रय मत लो, असत का भरोसा मत करो, असत का विश्वास मत करो, असत को महत्व मत दो। महत्व खर्चे में दो, उसको धन है उसका महत्व खर्चे करने में है, ऐसे समय है उसका सदुपयोग करने में महत्ता है। अगर सदुपयोग नहीं करो तो समय क्या महत्ता हुई? क्षितिज पावक गगन शमीरा पंच रचितिय अधम शरीरा, ऐसा महिमा कही है वहां आपने सुना ना, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। सब बातें विश्वास लाख सात बातें। उसमें सबसे पहले नरक नाम लिखा है कि मनुष्य ये बड़ा बढ़िया है कि आगे से नरक हो जाए, कि ये महिमा हुई कि निंदा हुई? तो धन की महिमा नहीं कही है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं कही गई है, वास्तव में सदुपयोग की महिमा कही गई है। शरीर के विषय में देखा नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरकों में जाने की भी निशेनी है और स्वर्ग में जाने की भी निशेनी है। तो दुरुपयोग करने में नरकों में जाओगे। धन है आपके पास में, उसका सदुपयोग किया जाए तो धन का सदुपयोग करके दूसरों के काम में आएगा, धन दान में काम आएगा। तो सतपुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, जो अच्छा आचरण करते हैं उनका धन दूसरों के हित के लिए होता है। सभी करो भाई, अपने पास में दे दे, तुम भी लो हम भी लाए। तो नहीं है तो भाई हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं, कोई पास नहीं है, अपने जितना है उतनी, अपनी योग्यता है जितना है उतने खर्च करो। तो धन है वो दान देने के लिए, दूसरों का रक्षा करने के लिए है। धनम दान आए, नहीं तो मद आए, मद हो जाए, घमंड हो जाएगा। ऐसे आपसे अपने विद्या है तो विद्या विवाद आए, विवाद कर दूसरों को नीचे दिखाना, हरा देना, ये दुष्टता की विद्या है। और दूसरा ज्ञान देना, दूसरों का उद्धार करना, दूसरों का कल्याण करना, ये विद्या सदुपयोग है। तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य। जो दुष्ट होता है उसके पास विद्या होती है तो दो निष्ठा दिखाता है, वो दो हरा देता है, तिरस्कार करता है, अपमान करता है, धन घमंड करता है, नादान। और शक्ति अपने पास में दूसरों को पीड़ा देता है, दूसरों को कष्ट देता है, तंग करता है, खलस्य दुष्ट के पास है। और साधु पुरुष के पास में क्या होता है, वहां विद्या ज्ञान आए, अपने को ज्ञान प्राप्त करे और वो भी ज्ञान दे, तो विद्या ज्ञान के लिए की तरफ नरकों की तरफ से बचा करके और उनसे उद्धार परमात्मा की तरफ ले जाए विद्या, तो वो विद्या ज्ञान आए। और बल प्राप्त हुआ है तो दूसरों का नाश नहीं, शुरू करने के लिए आशु संपत्ति मिल रहा है। कि वे जो दुष्ट होते हैं वो क्षयाय प्रभवन्ति, उनका जो प्रभाव पड़ता है उनमें शक्ति है, वो क्षयाय दूसरों का नाश करने के लिए होता है, सज्जनों के दूसरों को उपयोग करने के लिए। तो सदुपयोग की महिमा है। आपकी जो अवस्था है, मैंने आरंभ में ही कहा था कि बीमारी का भी सदुपयोग करने से कल्याण होता है, और स्वस्थता के साथ कल्याण होता है, धनवत्ता के खर्च करने से कल्याण होता है, निर्धनता से उसका कल्याण होता है, अरे भोजन मिले उसका भी सदुपयोग कल्याण होता है, अरे भोजन नहीं मिले उसका भी सदुपयोग कल्याण करता है। ये परिस्थिति कल्याण के बाधक नहीं है, कल्याण की साधक है। सुखदायी दुखदायी कैसी परिस्थिति हो, त्याग से होता है कल्याण। तो अभी नहीं मिला है तो अपने उपवास करेंगे, उपवास हम जान कर करते हैं, उसकी अपेक्षा वो उपवास बहुत ज्यादा दामी होता है, भगवान का दिया हुआ है। तो रोग होकर के हमारे दुख बात है, वो रोग अगर तपस्या की भावना करेगा तो वो तपस्या करने का मौका भगवान ने दिया है। जान करके आप तपस्या करते हो वो आपकी मनगढ़ंत तपस्या है, तो वो भी कल्याण करने वाली है। परंतु भगवान की दी हुई परिस्थिति महान कल्याण कर दी, तत्व की प्राप्ति करा दे। मैंने कहा था बृहदारण्यक उपदेश देखे 11वें ब्राह्मण में लिखा है। तो ऐसी बात है, हमारी जो परिस्थिति आती है ठीक करे, तो धन संपत्ति वैभव है इसका सदुपयोग कर ले। समय हमारे को मिला है मनुष्य जन्म का, इसका सदुपयोग करे। तो मनुष्य दुखी हो जाता है, जैसे कोई विद्या अध्ययन में लगता है तो विद्याकर पंडित बन जाता है, या खेल कूद में समय खरवा देता है कुछ नहीं। ऐसे समय जितना मिला आपको भजन ध्यान करो, उपकार करो, दूसरों की सेवा करो, हित करो। तो जो जो हित करोगे त्यो जो आपका हित होगा, और जैसे अहित करोगे आपका अहित होता चला जाएगा। वो अहित कब होगा कि जब पुराने पुण्य आपके है तब तक आपको सुख मिलेगा। नर तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है अवगुण करो हजार। तुम्हारे पुराना समय अच्छा बीता है, अच्छे धर्म की बात है, उसका जब तक फल है तब तक आप मौज करो। परंतु जब पुराने पापों का समय आ जाए तब फिर दुख पाना पड़ेगा, तो तेरी माँ पे अवगुण हो जाए। तो पुराने पुण्यों से जो हमारे को सुखदायी परिस्थिति मिली है, वो सुखदायी परिस्थिति सुख भोगने के लिए नहीं है। सज्जनों ध्यान देना मेरी बात की तरफ, सुखदाई अपने को परिस्थिति मिली है वो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए मिली है। यही तनु कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल सुखदाई परिस्थिति के भोगने के लिए नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित बस जिनके मनवाई, तिनका जग दुर्लभ कसु नहीं। ये बात इतनी पक्की इतनी पक्की इतनी पक्की है, मैं क्या महिमा करूं। ज्यादा से ज्यादा मैं कहूं तो निर्लज होकर यह कह सकता हूं मेरी देखी हुई है, मेरी जानी हुई है, मेरी भोगी हुई है, मेरी बीती हुई है मेरे जीवन में। जो अपनी ठीक अवस्था रख करके दूसरों के हित का करता है, उसका हित हुआ है, और कहीं भूल करी है तो दुख पाना पड़ा है, ऐसी पीटी हुई बात है। इस वास्ते दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे के हित के निवास करने से उसके पास में वस्तुएं आती है स्वाभाविक, और लोलुपता होने से वस्तुएं बंद हो जाती है। घर में आप रहते हैं फिर भी ताला लगता है, क्यों लगता है? कि इतना धर्म चोरी कर ले, और घर के आदमी है कोई बाहर का है, निर्विश्वास है, तो सब चीज खुली पड़ी रहती है, खुली रहती है। ऐसे जो ठीक त्याग है उनके सामने संसार की वस्तुएं खुली आती है, और भोगों के लिए अपने लोलुपता रखता है उसके सामने खुली वस्तु नहीं आती। ये हमारे देखी हुई बात है, आप माने न माने, जाने न जाने, आपकी मर्जी, हमारे देखी हुई बात है, हमारे में जीत बीती हुई बात है। वस्तु चाहते है मिलती नहीं, और नहीं चाहते तो मिलती है। एक कहानी बतावे, राजा थे तो शाम की वक्त में अपने महलों के ऊपर खुली छाती उस पर घूम रहे थे। 5-7 आदमी और थे महाराज के साथ में घूम रहे थे, तो महल के पीछे उस किले के पीछे टूटे फूटे मकान थे, तो उसमें एक कोई संत आया करते थे। तो राजा ने पूछा भी, मैं बालकपन में से देखता था, राजा बन गया तभी देखता, यहाँ संत आया करते थे और इस मकान में ऐसे जो सुना पड़ा उस पर ठहर जाते, अपनी भिक्षा ले ले पा लेते, भजन ध्यान करते, जो माने जम जाते। तो वे संत अच्छे थे, हाँ महाराज अच्छे लोग करने लगे, बड़े ओले पुरुष महापुरुष थे, वो तत्व के जीवन मुक्त थे। तो राजा ने कहा भाई वे संत हो तो उनको बुलाओ, अपने सत्संग करें। मैं तो उस समय में समझा नहीं, कुछ बालक था, जवान था, उस समय ख्याल नहीं किया, परंतु ऐसे संत मिलते नहीं तो बुलाओ। तो लोग खोज गई, खोज करने पर पता लगा कि उनका शरीर नहीं रहा, ऐसे ऐसे माधव मां तो बड़े ऊंचे थे परंतु उसका शरीर नहीं, और शांत हो गए। अच्छा कि उनका सत्संग करने वाला कोई चेला हो, शिष्य हो, बुलाओ, देखो तो सही। ये एक बड़ी मार्मिक बात है कि जब तक वस्तु होती है तब तक उसकी कीमत नहीं करते, वो चली जाती जब रोते हैं, जब रोने से क्या हो भाई, अब पछता है क्या, चिड़िया सूख गई खेत। तो वो जब थे चेत नहीं गया, अब चेत हुआ है कि वहां सत्संग करने वाला कोई शिष्य हो तो उनको भी लाओ। तो खोज करने पर एक साधु मिले कि महाराज वो संत थे, हाँ मैं जानता हूँ, मैं साथ में भी रहा हूँ उनके, साथ रहे वो शिष्य थे, आप शिष्य नहीं, शिष्य नहीं बनाया, पर मैं साथ में रहा हूँ कई वर्षों तक। तो कहा सा एक साथ में रहने वाले साधु तो है, उनको भी बुलाओ, उनको बुलाओ सर। तो कहा भी आप चलो राजा जी बुलाते हैं। तो उसने कहा मैंने क्या कसूर किया भाई, मैंने क्या अन्याय किया, राजा बुलाता है तो उनको कसूर हुआ है, कसूर नहीं महाराज, वो कुछ सत्संग की बात सुनना चाहते है, इस बात को बुलाते हैं। अच्छा चलो, साथ में चल दिए। तो वो शहर में होकर गए तो वहां एक कुतिया ब्याई हुई थी, कुतिया ने बच्चे दे रहे गए थे, पिल्ला छोटे छोटे खूब खेल रहे थे उसमें, वहां बैठे तो उसने देखा भाई लोग शंका करते होंगे, उसने एक बच्चा अपने सादर में लुकाल से पालिया ले लिया। अब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने देखा भाई संत आते हैं तो इनको क्या देना चाहिए, राजाओं की बड़ी आसन कहाँ दे, कुर्सी किसको दी जाए, कैसा आदर दिया जाए, तो उनके विचार रहता है। तो एक गलीचा बिछा दिया, आप बैठ गए उस पर, सामान संतों को बैठा देंगे। तो बैठ गए, आओ सा खड़े हुए बैठ गए। तो साधु बैठे तो राजा की तरफ ऐसे पैर फैला कर बैठ गए। राजा ने देखा समझते नहीं, राजाओं के कैसे खाट बैठना चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, कुछ पता है नहीं, लंठ मूर्ख है सब भाई। पर फिर भी गंभीर होते हैं राजा, कैसे कैसे मूर्ख कह दे। तो कहा कि महाराज ये पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकोड़े तब से, फिर ठीक बैठ गए अपने। पैर फैलाए कब से, कि हाथ सिकोड़े तब से, हाथ यूं करते तो पहले पैर यूं करते सर, अब उसको लड़ा है, अब लड़ा नहीं है तो पैर लगा रही अपने। राजा देखे बुद्धिमान है, मूर्ख तो नहीं है, ठीक है महाराज। फिर पूछा कि वो संत थे बड़े महात्मा थे, हमारे बड़े उसी महात्मा थे बनाए, तो आप उनके साथ रहे, हमें साथ रहा हूँ, आपके गुरु थे, गुरु को शिष्य नहीं बनाते थे, साथ में मैं रहा था उनके, तो आपने कुछ लिया होगा। कह रहे लिया नहीं, हमने बड़ी गलती कर लिया नहीं, तो आपने कुछ नहीं लिया, कि मैं लिया नहीं, तो मैं लिया नहीं, तो क्या अर्थ हुआ कि वे संत थे, उनका संग निष्फल नहीं जाता। महत संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघ, लाल जी ने लिखा है कि महापुरुषों का संग दुर्लभ है, पहले तो मिलता नहीं, और मिल जाए तो पहचानने में नहीं आते कौन संत है कैसा है, क्या पता लगे, कुछ ऊपर से तो पता लगता नहीं, साधु वेश में कौन कौन होते हैं, गृह वेश में कौन होते हैं, बहनों माताओं में कौन है, संत बहनों में भी मीरा भाई जैसे संत हुए हैं, पुरुषों में भी महात्मा हुए हैं, साधारण ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अंतर सब में संत हुए हैं, तो संत की कैसे पहचान हो। तो हमने लिया नहीं, तो मेरा लिया तो नहीं, परंतु संतों का संग निष्फल नहीं जाता। दुर्लभ हो अगम्यो राघोष अमोघस्त, दुर्लभ है और पहचानने में नहीं आते, परंतु बिना पहचाने भी संग होता है वो निष्फल नहीं जाता, उनका संग का माध्यम होता है। कि कैसे, कि जैसे किसी बर्तन में घी डाला जाए और घी को ठीक ले लो, लेने पर भी चिकनाश रह जाता है, वो नहीं जाता। जैसे कस्तूरी की डिबिया है, उसमें कस्तूरी रखी है और कस्तूरी ले लो तो सुगंध उसमें रह जाती है, ऐसे रह जाए हम क्या करें, हमने लिया नहीं, कि महाराज वो सुगंध क्या है, वो चिकनाहट क्या है। तो साधु बोले कि देखो आप राजा, ये हम लोगों की चीज है, साधु होते हैं उनकी चीज, वो साधु ही पहचान है, आप लोग क्यों पूछते, कहते हमारी इच्छा है महाराज आपने उस चिकनाहट क्या रहा, वो सुगंधि क्या रही आप में, हम लिया तो नहीं, परंतु वो चिकना तो अब बर्तन लेता थोड़ा या घी रह जाता है, डिब्बे को सुगंधि लेती थोड़ी है रह जाती है, ऐसे उनके संग से लाभ हो जाता है। तो वो लाभ क्या है, तो पहले साधु कर लो क्या, हम साधुओं की चीज आपके जरूरत नहीं है, क्या नहीं हमारे को बताओ। तो कुत्ते का बच्चा था ना, उस हाथ में लिया, ये देखो राजा जी हम तो समझे नहीं, ये चिकनाहट है कुत्ता, ये बच्चा चिकनाहट है, क्या है सुगंधी है क्या है मतलब बताओ। कहते देखो आप बुरा तो नहीं मानोगे, कहते बुरा नहीं, क्यों मैंने पहले कह दिया कि साधुओं की चीज, आप राजा महाराजा हो तो बताओ। कि देखो इसमें और आप में हमें फर्क नहीं दिखता, इसमें भी प्राण है आप में प्राण है, इसमें हार्ड है मांस है, देख देख रहे थे आंखें भी इनके है, मन भी है इनकी, सब है आप में भी है। तो शरीर की दृष्टि से देख रहे तो पांच भौतिक क्षेत्र पावक ये है, ऐसा ही शरीर आपका है। आत्मा देख रहे तो परमात्मा का अंश आत्मा इसमें आप में भी है, प्राण इनके चलते आप भी चलते हैं, खाना पीना होता है वो सब होता है, तो इस दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता। ये है महाराज संतों की कृपा की बात, हम लेते तो हम महात्मा बन जाते, पर ये बात है तो राजा के भी ठीक बात है। तो वास्तव में संतों का अमोघ दर्शन होता है। बात ये कहनी थी कि हमारे अगर गर्ज होती तो हम बात हाथ फैलाते पैर फैलाते नहीं, तो हमारे से कुछ लेना आपसे है नहीं, कोई हमारी इच्छा नहीं, कोई चाहना नहीं है, इस वास्ते ऐसी चाहना रहित बन जाए। तो अन्याय पूर्वक चाहना है तो बहुत नीची चाहना है, न्याय युक्त भी चाहना क्यों करें, हम कामना क्यों करें, जब भगवान है यो ही विश्वम भरो देवा का सिंह भक्तान उपेक्षित है, वो परमात्मा जो मात्र प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, दुष्ट हो सज्जन हो पापी हो पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो महान महान नीच हो हत्यारा हो चाहे संत महात्मा हो, वो सबके लिए समान रीति से रक्षा करते हैं। पृथ्वी सबके सामने स्थान देती है, ये हवा सबको श्वास लेने के लिए देती है, जल सबके प्यास बुझाता है, अन्न सबकी भूख बुझाता है, चंद्रमा का प्रकाश सबको मिलता है, सूर्य का ताप सबको मिलता है, परमात्मा की हुई चीजों का सामान्य रीति से सबके लिए समान उपकार करते हैं। तो भगवान ऐसे कृपालु सबको करते हैं, तो हम अपनी चिंता करें कि कैसे मिलेगा। भूतरे साधने चिंता प्रथा कुरंती वैष्णवा, जो भगवान का भक्त करते हैं वे भोजन की चिंता करे, खाएंगे कहाँ, हम कपड़े कहाँ पहनेंगे, रहेंगे कहाँ। अरे विश्वम्भर परमात्मा है, उसके नाम से तुम वो चिंता क्यों करते हो। सज्जनों सच्ची बात है कि मिलती है, अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, जगह मिलती है। जो जो हम छोड़ते हैं अपनी इच्छा को, इच्छा अपने में नहीं रखते हैं, जो ही जो ये चीजें स्वतः मिलती है या इच्छा रखते हैं तो कष्ट से मिलता है। अरे हमारी इच्छा कुछ नहीं तो सुगमता से चीज मिलती है, ऐसे देखने में आती है। इसमें एक वैज्ञानिक बात है, वो ध्यान दो आप सुनाए। कल्पना करो कि ठंडी आ रही है तो हमारे एक कंबल चाहिए, तो हम कंबल को मांगे, वो भगत भगत जाए कंबल, भगत भगत तो भगत भगत भाग जाएगा, सुनेगा ही नहीं। चाहते हैं मांगते हैं नहीं मिलती, और है तो हमारी आवश्यकता तो है, परंतु क्या करें, कहना हमारा स्वभाव नहीं। तो साधु वास्तव में मांगते नहीं है, कह लेते लोग मांग कर रोटी खा, मांगते नहीं है, वो जाते हैं सामने देते हैं, मर्जी उसकी, न दे तो मर्जी उसकी, प्रसन्नता है। तो कंबल की चाहना हमारे भीतर हुई तो चाहना किससे हुई, आवश्यकता से, स्वाद के लिए, सुखेर के लिए, सुंदरता के लिए, श्रृंगार के लिए नहीं। ज्यादा पड़ता है तो कोई रक्षा हो जाए, ऐसा पर्द में टाट हो, चाहे कंबल हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं घास डाल करके ये प्रसाद ले जाते हैं, तो ऐसी हो। अब हम जब चाहना रखते हैं, ध्यान देना ये बात है खास, हम चाहना रखते हैं तो हमने चाहना को हम पकड़े रहते हैं कि हमारे कंबल चाहिए, कंबल चाहिए, ऐसी पकड़े रहते हैं। और आवश्यकता है हम सारे मेरे चाहे न मिले, और निर्वाह हो जाता है, क्या बड़ी बात है, ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमारी चाहना आपके हृदय में पहुंचती है और मन में प्रेरणा करते हैं कि ये साधु है, ये मांगते तो नहीं, पैसा इनके पास नहीं, तो ज्यादा लगता होगा, ऐसे आपके मन में और आप पूछते हो। पर कब कि हम चाहना छोड़ते हैं तो हमारी चाहना आप तक पहुंचती है, अगर हम पकड़े रहते हैं तो आप तक नहीं पहुंचती, हम मांगते बढ़ जाते हैं, आप तो पहुंचती नहीं चीज। तो ये मांगने इच्छा जो है, ये इच्छा का त्याग करने से चीजें पूर्ति होती है, उस इच्छा की पूर्ति हो, इच्छा के अनुसार वस्तुएं मिलती है, ऐसी वैज्ञानिक ढंग की बात है। और मांगने से चीज नहीं मिलती है। एक साधु थे, उन संतों को एक कपड़ा दे दिया कि महाराज ये चद्दर है आप रखो, तो उन्होंने चद्दर धोया, साफ किया, तो वो कई तो कपड़ा ये गेरू में मिट्टी में रंगते हैं, कई कई कोयला में रंगते हैं, कोयला काला है, उनको हम बना करके उनको गाल रंग लेते हैं कपड़ा, तो कपड़ा तो मिल गया, अब रहेंगे कहें कोयला, तो जाकर किसी घर में माई कोयला चाहिए, जा कोयला चाहिए, तेरे पास कोयला रखा है, नहीं दिया, जब उससे बैठ गए, एक सज्जन आए ना महाराज भोजन बनाऊ, तो उन्होंने कहा कि मांगे मिले न कोयला, अब अण मांगे पकवान, पकवान भोजन मिल गया, मांगे कोयले नहीं मिलता, तो मांगने से नहीं मिलती है, आवश्यक तो है, मांगते हैं ही नहीं, तो आपसे आप लोगों के हृदय में प्रेरणा होती है, आपसे वो देना चाहते हैं, अगर मांगते हैं तो देना नहीं चाहते उनको। आप ही देख लो, बड़े बड़े तीर्थों में आप जाओ, बद्रीनाथ आदि में जाओ, जो मांगने मिलते मिलते हैं उनको देना नहीं चाहते, अगर कुछ मांगते ही नहीं है। अरे भाई ये तो बात दूर रही, छोटा छोरा बिल्कुल अज्ञानी, कुछ समझता नहीं, 5-4 वर्षों का छोरा, 7 वर्षों का, उसके लिए माँ तैयारी करती है, अगर वही माँ 20-25 वर्ष का हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करती, माँ वही बेटा वही, फर्क नहीं, पर छोटे छोरे की चिंता रहती है, ये भोला है कहीं भूखा रह जाएगा, भूख लगे जिससे पहले चूर करके एक कटोरी जमा कर देखा, चोर बखाल है, वो खाए फेंक देता है, चल देता है, तो माँ उठा कर रख देती है, फिर भूख लगे फिर दे देती है, वो बिचारी नहीं करता कभी खाऊ पीछे खाऊंगा था क्यों कहीं पर, कपड़ा वो परवाह नहीं करता, शीतकाल आ रहा है तो माँ उसकी कपड़ा पहनती, ऊनी कपड़ा उनको पहनाती है, वो कह रहे क्यों करती है माँ ऐसा, अरे तेरे को पता नहीं, माँ को पता है कि घर में आगे सर्दी आ रही है, तो इस तरह से हमारे को पता नहीं है, भगवान को पता है किस तरह की वे तैयारी करते हैं, बड़ी विलक्षण बात है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम भरने से रहते थे, पुरानी बात है, शेर जी के रहते हुए बात है, एक साधु आए, तो हम वहाँ भिक्षा मांग लेते थे गंगा किनारे, ये लोग भोजन कराती बहन माताएं सज्जन करते थे, हम भी जाल कर देते एक रोटी हमारे को दे देते, ऐसे देखकर हम खा लिया करते थे। एक साधु आए, वो कहने लगे कोई साग है, कोई छाछ है कि दही है, कुछ डाले तो हमारे पास पात्र नहीं है, तो कोई पात्र मिल जा तो वैसे कैसा ही हो, पात्र चाहे मिट्टी का हो, चाहे कमंडल हो, चाहे खप्पर हो, कुछ भी मिल जाए। मैंने कहा महाराज मेरा मांगने का स्वभाव नहीं, कोई कहेगा क्या चाहिए तो मैं कह दूंगा कि भाई एक पत्र चाहिए ऐसा, तो ठीक है। दो तीन दिन के बाद में बोले अब मत करना है, अब कोई पूछे तो मत करना। मैं क्या हुआ, कहते मैंने देखा दो चार दिन में बिना पात्र के ही रोटी खा ली, तो बिना पात्र के तीन दिन चार दिन हुआ तो महीना भी चल सकता है, महीना तो वर्षों तक चलता है, तो उम्र भर चल सकता है। मैं देख लिया बिना पात्र काम चलता है, मांगना नहीं आवे। देखिए आपसे आप मन पैदा होता है, तो ये स्वतः आती है चीज कि उनके बिना हमारा काम चलता है। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो कार्य करने के लिए कई वस्तुओं को जुटाता है, कितनी वस्तुओं हो तो ये काम होगा, उसका काम बढ़िया नहीं होता है। जितनी वस्तुएं मिली उनसे अपना काम चलाओ ठीक तरह से, तो काम चलाने के लिए वस्तुएं उसके हाजिर हो ही जाती है। हम गुलामी करते हैं वस्तुओं की, वास्तव में वस्तुएं गुलामी हमारी करती है। जड़ चीजें चेतन के बिना काम नहीं आती, और चेतन बिना जड़ के काम आता है। मनुष्य है वो है, और एक काम आ जाएगा और एक काम ले लेगा। जड़ वस्तु तो आप काम में लोगों तो काम आ गई, जिस भोजन से आप तृप्त होते हैं वो भोजन पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, मनुष्य सड़ेगा नहीं भोजन के बिना। कपड़े का बिना आप रह सकते हो, कपड़ा आपके बिना कोई काम नहीं आएगा, कपड़ा पड़ा चाहे कूड़ा कचरा पड़ा है, फर्क क्या है, जब काम में नहीं ले तो रुपया भी क्या काम की। इस वास्ते काम में आने वाली चीज है वो आवेगी, अनिच्छित आवे बढ़ियाई, मुक्ति आ जाए कल्याण आ जाए महाराज भक्तों के पास में। जिस जीवन मुक्ति को लोग चाहते हैं वो अनिच्छित आवे, बिना बिना इच्छा आती है, तो इस वास्ते हमारी आवश्यकता है तो वो आती है। तो हम सदुपयोग करें, इतनी बात है कि जैसी परिस्थिति हमें मिले उसी परिस्थिति का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, तो आपसे वस्तु आती मिलेगी। अरे भाई पेट ही मैं जब पेट भरा, अब पेट के काज कहा भटके। आप हम जब पेट में थे अपने माँ के, तो माँ भी भोजन मिलता था, नहीं मिलता तो बढ़ता कैसे, बच्चा बढ़ता कैसे बताओ, उसको खुराक न मिलती हो तो बच्चा बढ़ जाएगा, तो वहां भी प्रबंध भगवान ने किया। और बाहर आए तो ऐसा प्रबंध किया महाराज, अगर गर्म दूध हो तो मुंह जल जाए बच्चे का कोमल मुंह जाए, और ठंडा हो तो वायु गर जाए, तो ना तो गर्म और ना सर्द, ऐसा ऐसा माँ का दूध। और मीठा डाले तो कहां से लावे, वो डाला हुआ मीठा ही होता है, माँ का दूध मीठा होता है, तो वो मीठा दूध ऐसा तैयार गर्म गर्म, जब चाहो तो पी लो, छोड़ दो पड़ा खराब होता नहीं, कभी छोड़ दिया खराब हो जाएगा। इतना प्रबंध जिस परमात्मा ने किया है, फिर हम चिंता क्यों करें, सदुपयोग करें, हम दुरुपयोग ना करें, अपनी जान से ठीक तरह से करें। तो प्रबंध सब भगवान की तरफ से होता है, तो हमारे पास जो वस्तु मिलती है उन जाने हुए असत का त्याग, त्याग किया उसकी बेपरवाह, उससे विरक्ति, उसके अधीन न होए, उसकी गुलामी न करें। धन वो धन की गुलामी नहीं है, धन हो जाए अच्छी बात है, अच्छे से अच्छे काम में धन लगाओ तो अच्छे काम से सिद्धि होता है। इस वास्ते जो परिस्थिति मिल जाए, जो संपत्ति मिल जाए, जो विद्या मिल जाए, जो योग्यता मिल जाए, जो आपके पास आ जाए, समय मिल जाए, उसका सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। तो जाने हुए असत के त्याग से परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। असत का ही तो बंधन है, जाने हुए असत का त्याग करने से क्या होगा, विरक्ति त्याग परमात्म तत्व की प्राप्ति सब हो जाएगी। इस वास्ते जाने हुए असत का त्याग करने से जीव का कल्याण हो जाता है। सबके लिए, धनी हो चाहे गरीब हो, विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, भाई हो चाहे बहन हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, कैसी अवस्था में कोई नहीं हो, जाने हुए असत का त्याग करने से कल्याण हो जाता है। नारायण 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 नारायण।